सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। मैं थोड़ा सा हट करके आपके साथ तीन पदों को लूंगा, केवल तीन पदों को, और लूका बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को बताता है, उसको क्यों आया हुआ। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने इस बात से कहा कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है। हम सचमुच में आनंद के साथ इस दिन को मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यूनिक जन्म था, पूरा उसका जीवन, उसका इतिहास, सब कुछ यूनिक जन्म। ऐसा जन्म संसार में किसी का नहीं हुआ। उसकी मृत्यु यूनिक मृत्यु थी, विशिष्ट। ऐसी मृत्यु किसी की मृत्यु नहीं। पिछली बार हम देख रहे थे, पिछली बार हम हेरोदेस के बारे में देख रहे थे कि हेरोदेस तो किस प्रकार से लोगों के जीवन को लेने के लिए लगा हुआ था, वो राजा था। लेकिन एक दूसरा राजा जिसका जन्म हुआ, वो स्वयं के जीवन को दे करके दूसरे के जीवन को बचाने के लिए संसार में आया था। और हमने इस बात को देखा था, और आपको याद होगा मैंने इस बात को कोट किया था, हिटलर ने इस बात को कहा था कि मैंने तो बंदूक के बल पर लोगों को अपना अनुयायी बनाया, अपने पीछे चलना सिखाया, सोचा कि वो मेरे पीछे, लेकिन फिर भी मेरे इतने अनुयायी नहीं बन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को बलिदान करके मेरे द्वारा असंख्य लोगों को अपने अनुयायी बनाया। ये अद्भुत बात, अद्भुत। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सच में बार बार स्मरण कर सकते हैं। तो लूका प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बिल्कुल अलग, मैंने शुरू करते समय दोनों के बारे में बताया था। लूका के परिप्रेक्ष्य क्या है, मत्ती का परिप्रेक्ष्य क्या है, मत्ती किस प्रकार से यूसुफ को सामने रख के बात करता है, और लूका किस प्रकार से केवल मरियम को सामने रख के बात करता है। हमने यूसुफ के जीवन के बारे में देखा था, लेकिन आज मैं लूका से कुछ पदों को आपके सामने ला जाऊंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में आ गए और सेवा में थे, और जब सेवा कर रहे थे तो कई समय बाद उनके सामने लोगों के सामने एक प्रश्न था, और प्रभु यीशु मसीह ने लेवी को बुलाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने लेवी को बुलाया तो क्या हुआ, और तब उसके बाद कुछ लोग पूछने लगे, कहने अरे ये तो लेवी के घर में, ये पापी के घर में जाके भोजन करवा, ये तो पापी के घर। लोगों के दृष्टि में, लोगों के विचार में बड़ी विचित्र बात थी, अगर ये धर्मी है तो एक पापी के घर में जाकर कैसे भोजन कर रहा है। तब वहां प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर रीति से अपने आने का, संसार में आने के उद्देश्य को बताते हैं। और वो कहते हैं लूका उसका 5 अध्याय और उसका 32 पद, वो ये कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन मैं पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। मेरा आने का एक उद्देश्य है, एक अभिप्राय है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म लेने का एक उद्देश्य अभिप्राय है। और हम बहुत समय से कई बातों को देखते चले आ रहे हैं, मैं उन बातों के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन सच है वो लोगों के सामने इस बात को स्पष्ट कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं धर्मियों को नहीं, धर्मियों की क्या जरूरत है, एक भले चंगे को क्या जरूरत है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आया हूं जो पापी हैं। अर्थात पापी कौन है, पापी सब पापी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, केवल यीशु को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो, क्योंकि मनुष्य पाप में जन्मा है। और प्रभु यीशु मसीह का संसार में जन्म लेने का उद्देश्य है, यह संसार में आने का उद्देश्य है, पापियों के लिए अपने जीवन को देने के लिए आया था, वो पापियों को बचाने के लिए आया। बाइबल कहते हैं सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित नहीं करने आए थे, प्रभु यीशु मसीह कोई समुदाय को खड़ा करने के लिए नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार से अपनी एक राजनीतिक राज्य को स्थापित करने नहीं आए थे। हमने पिछली बार देखा था प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की चिंता, प्रभु यीशु मसीह का समर्पण लोग के मनुष्य क्यों मनुष्य था, क्यों लोग, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। और अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने सृष्टि की थी तो उसने स्वयं मनुष्य को बनाया था, मनुष्य के जीवन में उसका श्वास डाला गया था, और इसलिए वो मनुष्य से प्रेम करता और वो नहीं चाहता था किसी भी प्रकार से मनुष्य नाश हो जाए। यद्यपि मनुष्य अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा अलग उसने मार्ग लिया और लोगों की दृष्टि में समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को इसलिए आऊं ताकि पापी लोग पश्चाताप कर सकें, मन फिरा सकें, वो जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की ऊर्जा क्या है। तो लूका 3 पद में इन उस यीशु के संसार में सेवा के उद्देश्य के और आने के उद्देश्य को वर्णन करता है, और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आया हूं। धर्मी तो ठीक है, लेकिन कौन धर्मी? कोई धर्मी नहीं। अगर तुम अपने आप को धर्मी समझते हो तो मेरा जीव मेरे तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाइबल साफ कहती है धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं। अर्थात इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा पद, मैंने कहा मैं ज्यादा व्याख्या पे नहीं जाऊंगा, लूका उसका 9 अध्याय। मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं पर बचाने आया है। लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, जितने आए सब ने पापियों का नाश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप का नाश किया। वो कह रहा है कि मैं लोगों प्राण नाश, ये सच है, अब मनुष्य के ऊपर है। मैंने इस पद को कहा परमेश्वर जगत से सप्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन अगर जो विश्वास ना करे, उसी के 17 पद में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो वो ना केवल वो इसलिए आया कि लोग पापी लोग पश्चाताप कर सके, अपने पापों से फिर सके, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके, लेकिन वो इसलिए ताकि लोगों के प्राणों को बचा ले। कहां से बचा ले? उस नरक में जाने से बचा ले, उस नरक की आग में से बचा ले, उस अनंत विनाश से बचा ले। और मेरे प्रियो, जब जब हम इस उत्सव को मनाते हैं या विचार करते हैं इन दिनों में, ठीक है आनंद बनान बहुत अच्छी बात है, उपहार का आदान प्रदान करना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को विश करना बहुत अच्छी बात है, ग्रीटिंग भेजना बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा हम एक दूसरे साथ अपना प्रेम, अपना सम्मान, अपना आदर, अपने मित्रता को व्यक्त करते, संबंधों को व्यक्त करते, अच्छी बात है। लेकिन अगर सब कुछ है परंतु अगर उद्देश्य नहीं है या उद्देश्य से हम वंचित हैं तो सब कुछ बेकार है। और इसीलिए मैंने कहा काश इस समय में कोई एक व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसको आप प्रभु यीशु मसीह के सुसंदेश को, शुभ समाचार को सुना सके। ये आक्षण का केंद्र है, लेकिन ये आक्षण थोड़ी दिनों का, एक हफ्ते बाद ये लाइट चली जाएगी। लेकिन सच्चा आक्षण कौन है? मेरे सेवा, आपकी सेवा, मेरा जीवन, आपका जीवन, मेरी साक्षी, आपकी साक्षी, उन लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आक्षण का कारण बन जाए और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना आक्षण का केंद्र बना। यही सच्चे उद्देश्य, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। और यदि मैंने और आपने जीवन को पाया है, उस उद्धार को प्राप्त किया है, प्रभु यीशु मसीह के सुसंदेश पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए संसार में मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज वो सिंहासन पर विराजमान है, फिर से वो आएगा ताकि अपने विश्वासियों को अपने साथ ले जाए, ताकि वो उनका भी न्याय करेगा, लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उनका भी वो न्याय करेगा और वे अनंत काल के आग में डालेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने यदि मुझे और आपको बचाया तो मेरे और आपके साथ जिम्मेदारी दी है कि हम उस संदेश को उस तक पहुंचा सकें। मैं अक्सर बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय 22 23 24 पद। तीसरा पद लूका उसका 19 अध्याय। ये तीन पद हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने लूका में अपने इस संसार में मनुष्य बनकर आने के उद्देश्य को बताया है। दसों पद मनुष्य का पुत्र तो खोए वो को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र तो खोए वो को ढूंढने, हम तो खो चुके थे, हमने अपना अपना मार लिया था अपने विचारों से, अपने धार्मिक कार्यों से, अपनी सारी चीजों से, अपने सोच से, अपने विचारों से। हम सोचे थे हम चर्च जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अच्छी बात, हम चाहते हैं हमारा जन्म कृष्ण परिवार में पैदा हो गए तो हमने हम मसीह बन गए, नहीं नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि एक एक मनुष्य पर, एक एक मनुष्य, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा हो चाहे किसी प्रभु में से। और इसीलिए लूका उस खोए हुए की दृष्टांत को सबसे ज्यादा बोलता है, खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़, खोया हुआ पुत्र, लूका ये इस बात को, क्योंकि उसके अंदर है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि जो मनुष्य खो गया है उसको, मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, परमेश्वर ने पहल की है, वो स्वर्ग सिंहासन छोड़ करके मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आया है, उसने पहल की है अपने प्रेम करने का कारण, अपनी दया के कारण, अपने उस अनुग्रह के कारण, और मैंने और आपने जो धार प्राप्त किया अपने कर्मों के कारण नहीं किया, धार्मिकता के कामों के द्वारा हम बचाए नहीं गए, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा बचाए गए। और इसलिए वो कहता है कि उसके आने को देखता है कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। हम पिछले दिनों में देख रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार हर अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के कितने उपनामों को वर्णन करता है, वो राजा है, वो उद्धार करता है, वो मसीहा है, वो शासक है, वो चरवाह है, हमने इन सारी चीजों को देखा था जो मत्ती वर्णन कर रहा है पहली दो अध्याय में किस रीति से प्रभु यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, इससे बड़ी बड़ी आशीष, इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं होगा कि जब मैं और आप उसकी आवाज को सुन करके उसकी भेड़शाला में शामिल हो जाए। होश है मेरे प्रियो, यहां पर कोई आज ऐसा हो जिसने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बहुत बड़े दिन अटेंड किए, बहुत सारे कैरल सिंगिंग में भाग लिया है, बहुत कुछ करा है, लेकिन अभी भी वो खोया हुआ है या खोई हुई है। मौका है इन दिनों में विचार करने का ताकि आप उसके राज में शामिल हो सके। उसने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई है, निंदा सही, अपमान सहा, बलिदान किया, लहू बहाया, सब कुछ उसने कार्य पूरा किया है। केवल उस पर विश्वास करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपना मन फिरा करके, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं जिसको देने के लिए वो आया और जिसके लिए उसने कीमत चुकाई। एक या दो संडे पहले बता रहा था, एक कार्टून बनाया गया बड़े दिन के बारे में, कुछ लोग हैं अपना क्या नाम से बोतल में भरे पड़े हैं और लोगों के दिमाग में यही है, अरे बड़ा दिन आ रहा है, अरे भैया दावत करोगे, ये करोगे, करोगे ऐसे करोगे, दावत कर रहे, बड़ा दिन एंजॉय कर रहे हैं, नीचे वही गिरे पड़े, बड़ा दिन प्लस पड़ा दिन इज इक्वल टू सड़ा दिन। ये संदेश नहीं है, वो संदेश जो जीवन का संदेश है जिसमें प्रभु की बलिदान शामिल है, जिसमें प्रभु का लहू शामिल है। तो केवल हम चरनी को स्मरण नहीं करते, हम पिछले संडे देख रहे थे कि मजूसियों ने चरनी में जाकर भेंट नहीं चढ़ाई थी, चरनी में भेंट नहीं चढ़ाई थी, प्रभु यीशु मसीह उस समय चरनी में नहीं जब भेंट चढ़ाई थी, प्रभु यीशु मसीह उस समय घर में थे, उनकी आयु बढ़ चुकी थी, उनका समय बढ़ चुका था। प्रश्न यह है क्या वो यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय की चरनी में जन्म लिया? काश ये समय ऐसा हो उसका आनंद मनाने का, धन्यवाद देने का, उसकी प्रशंसा करने का, उसकी बड़ाई करने का, उसकी स्तुति करने का, और उसके साथ साथ उस आनंद को, उस खुशखबरी को दूसरों तक बांटने का समय हो। हाँ, वो यीशु मसीह मेरे जीवन में उसने जन्म लिया, मैंने उसके अनुग्रह को पाया है, मैंने उसकी दया को पाया है, मैंने उसकी क्षमा को पाया है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैंने उसके धार को अनुभव किया है, मेरे पास अब एक धन्य आशा। प्रभु का जन्म अगर धन्य आशा के साथ नहीं है तो बेकार है। सो प्रभु साधक, तो तीन पदों को मैंने आपके सामने रखा, लूकास का पांचवा अध्याय, लूकास का नौवां अध्याय और लूकास का उन्नीसवां अध्याय, तीन पद जहां प्रभु यीशु मसीह इस उद्देश्य को बताते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सच में इस उद्देश्य को जानते हुए अपने जीवन को तैयार कर सके और आगे बढ़ सके।